ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। शिक्षा मंत्री विद्या भट्टराय ने असहमति के कारण नहीं बल्कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया स्पष्ट। कक्षा 12वीं की परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही आयोजित करने का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का निर्णय। परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी सरोकार वालों से सहयोग की अपील। और पाकिस्तान में हुए सड़क हादसे में हुई 20 लोगों की मौत और कई अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समृद्ध और समतामूलक समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी स्थापना के समय से ही समानता, समृद्धि और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण की परिकल्पना की है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा कि पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने और उसे विभाजित करने के लिए षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ पार्टी को सुरक्षित रखते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय के इस्तीफे को लेकर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा किसी असहमति के कारण नहीं बल्कि स्वास्थ्य कारणों से है। बाहर कुछ लोगों द्वारा ये चर्चा की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री के असहयोग और अपेक्षा के कारण हुआ है, जिस पर प्रधानमंत्री ओली ने असंतोष जताते हुए कहा कि इस तरह के गलत प्रचार का कोई औचित्य नहीं है। इस अवसर पर 6 वरिष्ठ नेताओं को कम्युनिस्ट योद्धा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन ने विभाजन और बलिदान के बीच आज की स्थिति तक पहुंच बनाई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के 76वें स्थापना दिवस और लेनिन की 156वीं जयंती के अवसर पर आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि लेनिन की जयंती के दिन पार्टी की स्थापना होना केवल एक ऐतिहासिक संयोग नहीं है बल्कि प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता कम्युनिस्टों की एकता है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड सानो ठीमी ने 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथि आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। बोर्ड की आज की बैठक ने परीक्षा को न रोकने और निर्धारित तिथि में ही संचालित करने का निर्णय किया है। ये जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष महाश्रम शर्मा ने दी। हालांकि ज्ञात हो कि परीक्षा के प्रबंधन और संचालन में सहयोग देने वाले शिक्षक पिछले 21 दिनों से सड़क आंदोलन पर हैं। वहीं शिक्षक महासंघ के आंदोलन के बीच भी निर्धारित तिथि में ही परीक्षा करने की पूर्ववत अड़ान में रहे बोर्ड ने विद्यार्थियों से परीक्षा की तैयारी को धैर्यपूर्वक निरंतरता देने का अनुरोध किया है। बता दें कि 12वीं की परीक्षा इसी वैसाख के 11 गति से होने वाली है। धनुषा जिले के शहीद नगर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 वासुदेव पट्टी में जहर खाने से 3 बच्चों की मौत हो गई है जबकि उनकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता वरुण बहादुर सिंह ने बताया कि स्थानीय निवासी सुशील साह के 8 वर्षीय बेटे आदित्य, 4 वर्षीय बेटी आकृति और 2 वर्षीय बेटी आरुषि की जहर खाने से मृत्यु हो गई। घटना के बाद तीनों बच्चों को गंभीर हालत में जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल ले जाया गया था लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रहरी के अनुसार 30 वर्षीय बबीता सा बच्चों की मां भी जहर खाने के बाद गंभीर हालत में है और उसका उसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बबीता ने कल शाम अपने तीनों बच्चों को जहर पिलाया और खुद भी जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। प्रहरी ने बताया कि इस घटना की अभी और जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जलवायु परिवर्तन के कारण दुख कष्ट झेल रहे थामे क्षेत्र के निवासियों को सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है। सगरमाथा संवाद के पूर्व संध्या पर थामे गांव में आयोजित आरोही सम्मेलन जलवायु न्याय के लिए संवाद को शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने थामे के लोगों के प्रति सरकार का समर्थन दोहराया। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर साथ साथ फाउंडेशन द्वारा ये आयोजन किया गया जो जलवायु न्याय के क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों की मदद करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने थामे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में टिकाऊ विकास और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। विकास साझेदार संस्था किडार्क नेपाल द्वारा आयोजित हिमालयी संवाद जुमला में शुरू हुआ है। कर्णाली प्रदेश के सभी 10 जिलों के नागरिक अगुओं, बच्चों व युवाओं की सहभागिता में हिमालयी संवाद शुरू हुआ है। हिमालयी संवाद का औपचारिक उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य देवेंद्र बहादुर शाही ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कार्बन उत्सर्जन में हमारी भूमिका बेशक नहीं है, लेकिन मनमाने तौर पर सड़क खोदने, पेड़ पौधों को नष्ट करने जैसे काम हमसे होते हैं, इसलिए भी जलवायु परिवर्तन का असर यहां दिखने लगा है। बता दें कि हिमालय संवाद में समग्र कर्णाली प्रदेश से 200 लोगों की सहभागिता होगी और 2 दिनों तक चलने वाले संवाद में जलवायु प्रभाव तथा अनुकूलन संबंधी 4 सत्र संचालित होंगे। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का और भारत के विद्युत, आवास तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज संयुक्त रूप से अरुण तीसरे जल विद्युत परियोजना का स्थलगत निरीक्षण किया। भारतीय मंत्री खट्टर ने 2 दिवसीय यात्रा के तहत नेपाल पहुंचकर 900 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना के बांध स्थल और पावर हाउस का जायजा लिया। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त रूप से यूनिट 2 का उद्घाटन किया और वृक्षारोपण भी किया। निर्माण प्रगति और चुनौतियों की जानकारी लेने के लिए उन्होंने ठेकेदार कंपनी सतलज जल विद्युत निगम के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। ऊर्जा मंत्री खड़का ने भारत सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय मंत्री खट्टर ने कहा कि नेपाल में जल विद्युत का विशाल संभावना है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। उन्होंने परियोजना के शीघ्र पूरा होने पर जोर दिया। लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश की जनता के लिए नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में आज से किडनी ट्रांसप्लांट सेवा औपचारिक रूप में शुरू हुई है। भेरी अस्पताल के प्रमुख मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निराजन सुवेदी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा केंद्र के साथ समन्वय में सेवा शुरू की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंदोलनरत शिक्षकों के विरोध का समाधान वार्ता के माध्यम से करके बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न करने का आंदोलनरत पक्ष और सरकार से आग्रह किया है। आयोग ने सचेत कराते हुए कहा है कि समस्या का संबोधन समय पर न होने से लाखों विद्यार्थियों पर दूरगामी मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्रों को प्रतिष्ठित उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए व्यवसायियों की सक्रियता जरूरी है। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ के 3rd स्थापना दिवस पर आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अधिकारी ने ये बात कही। काठमांडू महानगरपालिका ने खुले स्थान में कचरा न जलाने का महानगरवासियों से आग्रह किया है। ये बताते हुए कि प्लास्टिक जैसे चीज जो को जलाने से निकलने वाला धुआं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। महानगर ने मनमाने तौर पर कचरा न जलाने का आग्रह किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। खाई में वैन पलटने से 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 लोग बुरी तरह से घायल हैं। मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की वजह वैन की तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। यह हादसा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ है। दमशोरो जिले में एक वैन पहाड़ी इलाकों से गुजर रही थी। वैन की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके कारण वैन का संतुलन डगमगाया और वैन गहरी खाई में जा गिरा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। शिक्षा मंत्री विद्या भट्टराय ने असहमति के कारण नहीं बल्कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया स्पष्ट। कक्षा 12वीं की परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही आयोजित करने का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का निर्णय। परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी सरोकार वालों से सहयोग की अपील। और पाकिस्तान में हुए सड़क हादसे में हुई 20 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।